मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, और यहां रेडिकल है मेरे राम, राम रेडिकल है, राम रेडिकल क्यों है? रेडिकल माने अलग हट करके सोचने वाला, केवल सोचने वाला नहीं, थिंक डिफरेंट इज नॉट सफिशिएंट, थिंक डिफरेंट एंड डू डिफरेंट। अलग हट करके सोचना तो बहुत लोग जानते हैं, उससे होना क्या है? थिंक डिफरेंट, ये स्टीव जॉब्स ने कहा था, लेकिन मैंने ऐड किया है थिंक डिफरेंट डू डिफरेंट। अलग हट करके सोचो और अलग हट करके काम करो, जब दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो परफेक्शन आएगा, और जब परफेक्शन आएगा तभी तो अचीवर होगा व्यक्ति। राम अचीवर है क्योंकि राम रेडिकल है, केवल सोचने में नहीं, अलग हट करके सोच भी रहे हैं और अलग हट करके कर भी रहे। ऐसे ही लोग समय की शिला पर अपने हस्ताक्षर करते हैं जो कभी मिटते नहीं। राम मौन है। गुरु विश्वामित्र ने पूरी कथा को नरेट कर दिया है राम के सामने, और राम महसूस कर गए हैं जिस्ट कि है क्या। ये अहिल्या और इंद्र और गौतम का जो त्रिकोण है, इसका जो मूल केंद्र है त्रिकोण का, वो केवल यौनिक मूल्यों का संघर्ष, ये अनुभव कर लिया है राम। वैल्यूज रिगार्डिंग द सेक्सुअलिटी, इसका केंद्र में है सारा संघर्ष। प्योरिटी ऑफ वर्जिननेस, कौमार्य की अक्षुणता और उसकी शुद्धता को लेकर के जो मूल्य हाल ही में बने हैं उनको लेकर के संघर्ष है, ये अनुभव कर लिया है राम ने। गुरु विश्वामित्र प्रबोधन करते हैं अपने कर्मों से भी, अपने विचारों से भी। इसीलिए गुरु ने राम को कोई आदेश नहीं दिया, कथा सुना दी, स्पेस दे दिया है राम, स्पेस दे दिया है कि अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। जो स्वयं प्रबोधित होता है वो दूसरों को जल्दी आदेश नहीं करता, वो अपनी प्रायोरिटीज देखता है और दूसरों को स्पेस देता है। गुरु राम ने आए, गुरु ने राम को स्पेस भी दे दिया है, समय भी दे दिया है। गुरु ध्यान में है और राम विचार। ध्यान तो विचारों का विश्राम है, ध्यान तो वही है जहां व्यक्ति के अंदर विचारों का प्रवाह ठहर विश्राम में आ जाए, तभी तो ध्यान लगेगा। तो गुरु ध्यान में, राम अपने कर्तव्य के लिए, अपने कर्म के लिए विचार कर रहे हैं। राम सोचते हैं कि अहिल्या को यौनिक स्वतंत्रता का उपयोग करने के कारण ऋषि ने और समाज ने दंड दिया, ये बड़ा संघर्ष है स्त्री की स्वतंत्रता और उसकी यौनिक स्वतंत्रता को लेकर, फॉर द सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ वुमन। राम का जो समय है, त्रेता का जो समय है, इस युग की जो प्रवृत्ति है, ये सिद्धांतों और मूल्यों का संधि काल है। पहले के सिद्धांत और हैं, नए सिद्धांत बन रहे हैं और सिद्धांतों के साथ मूल्य भी बन रहे हैं। विवाह में यौनिक शुचिता, सेक्सुअल प्योरिटी और यौनारक्षण, सेक्सुअल रिजर्वेशन के जो नए सिद्धांत आए हैं, इन्हें अभी बिल्कुल ताजा ताजा हाल ही में ऋषियों ने स्थापित किया है, क्योंकि यह सिद्धांत पहले नहीं, और इस पूरे सिद्धांत के निर्धारण की प्रक्रिया में ऋषि उद्दालक के पुत्र आचार्य श्वेत केतु की बड़ी भूमिका है। उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत एक बार श्वेत केतु अपने पिता और मां के साथ बैठे हैं, एक और ऋषि आते हैं और श्वेत केतु की मम्मी को अपने साथ डेट पर ले जाते हैं। श्वेत केतु को यह बात समझ में नहीं आती है, वे अपने पिता से पूछते हैं कि आप उपस्थित हैं, मेरी मां आपसे विवाहित हैं, फिर भी ये किसी अन्य ऋषि के साथ क्यों चली गई? पिता उत्तर देते हैं कि यह समाज में स्वीकृत है और सहज है, यह कोई गलत बात नहीं। आज भी बहुत सारे आदिवासी समाजों में प्री मैरिटल और आफ्टर मैरिटल सेक्सुअल रिलेशंस परमिटेड है, आज के समय उस समय भी थे, क्योंकि जो हमारा आदिवासी समाज है उन प्राचीन परंपराओं का ही निर्वाह कर रहा है। लेकिन श्वेत केतु इस बात से सहमत नहीं है, इसलिए वो पांचाल परिषद में, जिसका केंद्र कांपिल्य जिला फरुखाबाद कायमगंज तहसील हुआ करता था और जिसका दूसरा केंद्र अहिछत्रा रामपुर बरेली के पास हुआ करता था, वहां उस पांचाल परिषद में जो ऋषियों का प्रथम शैक्षिक संगठन है, याद रखिए मेरे राम, तक्षशिला भारत का पहला विश्वविद्यालय नहीं। भारत का जो पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो वैदिक काल में था और उसका नाम था पांचाल परिषद, जिसके दो केंद्र थे, एक अहिछत्रा और दूसरा था कांपिल। वहां इस मुद्दे को, इस इशू को उठाते हैं श्वेत केतु और समस्त ऋषि की, ऋषियों की सहमति से ये निर्धारित कर देते हैं कि अब प्रेम, विवाह और यौनिकता तीनों एक ही बिंदु पर ठहरे होंगे, यानी जिससे विवाह होगा उसी से प्रेम होगा और उसी से यौनिक संबद्धता होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि देह में है कोई और नेह में है कोई, अब ऐसा नहीं है, जो देह में है वही नेह में होगा, वही प्रेम में होगा। तो प्रेम, लव, मैरिज एंड सेक्सुअलिटी, ऑल ऑफ थ्री आर कंबाइंड ऑन ए सेंट्रल पॉइंट। सो दैट वॉज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सोसाइटी। हा, लेकिन यहीं पर एक बात और है मेरे राम, कि ये तीनों बंधन लगा दिए गए स्त्री पर, लेकिन पुरुष पर अभी ये बंधन नहीं। पुरुष के पास अभी भी अधिक यौनिक स्वतंत्रता है, वो एक से अधिक स्त्रियों से विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात भी संबंध रख सकता है, एक से अधिक विवाह भी कर सकता है। आप जानते हैं कि पहले ये जो समय चल रहा है त्रेता का, वैदिक काल का प्रभाव है इस पूरे काल, इसमें जो ऋषि हैं वो सन्यासी नहीं, सारे ऋषि गृहस्थ हैं और उनके एक से अधिक पत्नियां भी, ये मुनि नहीं, प्रत्येक ऋषि मुनि नहीं। मुनि शब्द तो आएगा जैन धर्म के प्रभाव से, यानी 600 BC onwards। अभी कहां मुनि है, मुनि तो वो हैं जो मौन रहते, जो ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, वो मुनि कहलाते हैं। अभी मुनि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी तो ऋषि हैं, गृहस्थ आश्रम में भी हैं, यज्ञ करते हैं, अभी तपस्या भी महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तप का प्रधानता नहीं आई है, इस समय तो यज्ञ की प्रधानता है। ये यज्ञ का तप तो वही होता है ना, जिसमें हम शरीर पीड़न करते हैं, ये भी सांख्य के आधार पर जैन धर्म में बढ़ेगा और जैन धर्म का प्रभाव हमारे समाज पर आएगा, तब तप शुरू होगा, तपस्या शुरू होगी। तप माने शरीर का पीड़न करना, स्व शरीर पीड़न ही तप कहलाता है, अपने शरीर को कष्ट देना। ये आत्मा जो शरीर रूपी पिंजड़े में कैद है, इसको मुक्त कराना। चलो उड़ जा रहे पंछी, ये देश हुआ वीरा, वो है तप। ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसाई धर्म के से भी 600 वर्ष पहले इसका प्रारंभ होगा, और अभी तो हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। तो पुरुष एक से अधिक विवाह करता है और संबंध भी बनाता है विभिन्न स्त्रियों से, लेकिन स्त्री को तो प्रतिबंधों में बांध कर पवित्र घोषित कर दिया गया। इसी युग में इस समाज का दोहरा चरित्र, इट इज अ ड्यूअल कैरेक्टर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी, ऐसा अनुभव कर रहे हैं राम। ये अनुभव उनके अंदर एक विचारों में उद्वेलन लहा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि राम कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया। देखें राम आगे क्या करते हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, रेडिकल है मेरे राम, रेडिकल है मेरे राम।
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा।
मानव है मेरे राम, रेडिकल है मेरे राम। राम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि गौतम ऋषि ने अपने तप की महत्वाकांक्षा में अपनी पत्नी अहिल्या को वस्तु मान ली, और अहिल्या के अंदर जो व्यक्ति है उसकी उपेक्षा कर बैठे। ऋषि और अहिल्या का विवाह ही अपने में एक विडंबना थी। अहिल्या का स्व, उसका अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ वुमन दमित हो रहा, सप्रेस हो रहा। वो तपस्विनी तो थी नहीं, अहिल्या तो रूप गर्भिता कामनी स्त्री थी। अहिल्या ने तो अपनी क्षुधा, काम क्षुधा की पूर्ति की। राम सोच रहे, राम निर्णय कर रहे हैं अपने विचारों में कि दोष व्यक्ति का नहीं, यानी कि दोष अहिल्या का नहीं, दोष तो मूल्यों का है। इस समय राम, तुम्हारे राम मेरे राम, समय राम कर्मोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, कर्मोत्तम। इसलिए राम रेडिकल हो उठते हैं, अलग हट करके सोच लेते हैं। अहिल्या के मृत पड़े आश्रम में अंदर पहुंचते हैं और खोजते हैं अहिल्या को, कि अहिल्या कहां कहां बैठी है, क्योंकि उस पूरे वीराने में पता ही नहीं लगता था कि अहिल्या है भी के नहीं भी। ऋषि विश्वामित्र आए हैं अहिल्या के आश्रम में, राम आए हैं, लक्ष्मण आए हैं, यानी कितने वर्षों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई आया है इस आश्रम में, तो आसपास के कुछ वनवासी स्त्री पुरुष भी इकट्ठा हो गए। राम स्त्रियों से अहिल्या को खोज करके, खोज भी लेते हैं, स्नान कराने का आग्रह करते हैं, और फिर राम वैदिक रीति से अहिल्या का पूजन सत्कार करके उनके चरण स्पर्श करते। ये है पुरुषोत्तम होना राम का, ये राम का पुरुषोत्तम होना भी है, बस मर्यादा यहां पर नहीं, यहां कर्मोत्तम है। पुरुषोत्तम भी है, कर्मोत्तम भी है, क्योंकि रेडिकल जब आदमी होता है तो कर्मोत्तम होता है। फिर राम जाते हैं, ऋषि गौतम को खोज कर लाते हैं वनों की उन अनंत गहराइयों से जहां वो अज्ञातवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और लाकर के अहिल्या के आश्रम को जीवंत बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, रेडिकल है मेरे राम।
मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। मोरे सबुई एक तुम स्वामी, मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु गुर अंतर्यामी, दीन बंधु गुर अंतर्यामी, गुर अंतर्यामी।
मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। तो देखिए अहिल्या की जब बात हो रही, मैं स्मरण करना चाहता हूं और आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं मेरे राम, पंच कन्याओं के बारे में। पंच कन्या में पहली कन्या है अहिल्या। अहिल्या और जो पांचों कन्याएं हैं, यहां पर ये कन्याओं का मतलब 10 वर्ष की कन्या नहीं, ये पांच स्त्रियां हैं जो प्रातः वंदनीय है, और ये पांचों स्त्रियां यौनिक वर्जना तोड़ने वाली हैं, फिर भी पूजनीय है, और इन्हें कन्या क्यों कहा गया है? वैदिक जो सामाजिक मूल्य बन गए थे वो धीरे धीरे सिद्धांतों की तरह समाज में आ गए। मूल्य में और सिद्धांत में फर्क होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड वैल्यू। प्रिंसिपल इज एटर्नल, इट हैज द एटर्नल सिग्निफिकेंस। सिद्धांत शाश्वत होते हैं, जल्दी बदलते नहीं। सत्य बोलना है, ये सिद्धांत है, न वैदिक काल में ये बदला था न आज बदला है। सिद्धांत की बात करेंगे तो सत्य एक सिद्धांत है, अहिंसा एक सिद्धांत है, कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है। कोई धर्म विश्व का नहीं कहता कि हिंसा कर, ये सिद्धांत है। लेकिन मूल्य, मूल्य तो एक छोटी चीज होती है, एक समुदाय का कोई मूल्य हो सकता है और व्यक्ति का भी मूल्य हो सकता है। बहुत से लोग आज भी इस मूल्य में विश्वास करते हैं कि अगर वो किसी बेटी की शादी में जाएंगे तो भोजन नहीं करेंगे, ये उनका मूल्य है, ये सिद्धांत नहीं। ठीक है, वो नहीं करते, वो अपना मूल्य जी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बेटी की शादी में भोजन करता है वो कोई पाप करता है। जब सिद्धांतों का वायलेशन होता है, व्हेन प्रिंसिपल्स आर वायलेटेड दैट इज सिन, तो वो पाप होता है। मूल्य का वायलेशन जब होता है, यानी मूल्य को अगर हम तोड़ देते हैं तो वो पाप नहीं होता, ये व्यक्तिगत सामुदायिक और सामाजिक एक एक सर्किल है, एक परिधि है, बस वहीं तक मूल्य की सीमा होती है। तो जो मूल्य बने थे वो सिद्धांत बनते जा रहे। जो आहिनिक सूत्रावली है उसमें पंच कन्या के प्रतिदिन स्मरण का उल्लेख है। ये जो ग्रंथ है वो सूत्र ग्रंथों के आधार पर गृहस्थ जीवन की आचरण संहिता जैसा है। वैदिक काल में चार वेदों की रचना हुई, ब्राह्मणों की रचना हुई, अरण्यकों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, और उसके बाद षड वेदांग की रचना हुई, और उस षड वेदांग में सूत्र ग्रंथ आते हैं, जिसमें ग्रह सूत्र जो है वो जीवन की आचरण संहिता को निर्माण करते हैं, और यही भारत के पहली बार कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी है, जिनके आधार पर आगे चलकर की स्मृतियों की रचना हुई, 18 स्मृतियां लिखी। तो स्मृतियों के मूल में कौन है? सूत्र ग्रंथ, और सूत्र ग्रंथ के आधार पर रचना हुई आहिनिक सूत्रावली। इसमें गृहस्थ जीवन का पूरा आचरण दिया गया। आहन, आहन का अर्थ होता है दिन, दैनिक जीवन की जो वैदिक अग्निहोत्रों के आधार पर जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, वही आहनिक है। पंच कन्याओं में प्रथम नाम अहिल्या का है, फिर मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी है। पांचों कन्याएं यानी पांचों महिलाएं विवाहित, और इन विवाहित महिलाओं को कन्या कहा गया। इन पांचों महिलाओं ने अपनी यौनिक स्वतंत्रता का उपयोग किया। इनमें कोई भी स्त्री एक ही पुरुष के यौनिक अनुबंध में आजीवन नहीं रही। अहिल्या ने पति होते स्वेच्छा से इंद्र के साथ सहवास किया, अभी आपने पूरा प्रकरण सुना। मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को पति बनाया, राम के कहने पर भी बनाया, राम ने आज्ञा भी दी इसके। तारा ने भी पति बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को अपना पति चुना। कुंती ने विवाह पूर्व कर्ण को जन्म दिया, और फिर नियोग विधि के द्वारा पति पांडु के होते हुए भी पर पुरुषों से संतान प्राप्त। नियोग वैदिक एक नियम है, किसी स्त्री के अगर संतान नहीं, विवाहित है लेकिन संतान नहीं, पति की या तो मृत्यु हो गई है या 7 वर्ष से अधिक हो गए हैं, पति का पता नहीं है कहां गया, या वो इंपोर्टेंट है, नपुंसक है, क्लीव है, या ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि संतान को जन्म नहीं दे सकता, तो किसी दूसरे सक्षम व्यक्ति से संतान प्राप्त की जा सकती है, वो स्त्री संतान प्राप्त कर सकती है। इस विधि को कहा गया नियोग, इसी विधि से पांडवों का जन्म। और द्रौपदी, द्रौपदी ने भी 5 पतियों का सुख भोगा, लेकिन फिर भी पांचों महिलाएं प्रातः वंदनीय है और इन्हें कन्या कहा गया। राम ने अहिल्या को जो सम्मान प्रदान किया वो इस बात का प्रतीक है कि यौनिक स्वतंत्रता दंडनीय नहीं, सेक्सुअल फ्रीडम इज नॉट पनिशेबल। स्त्री को कितनी बड़ी बात थी जो समय ये मूल्य आया हमारे समाज में, और धीरे धीरे ढहता गया और खत्म होता गया कि स्त्री को उसके पति की कस्टोडियल प्रॉपर्टी नहीं मानना चाहिए, अधिकृत वस्तु नहीं मानना चाहिए। कस्टोडियल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, ये मेरी कस्टोडियल प्रॉपर्टी है, ये मैंने खरीदी है, मैं चाहूं तो इसे तोड़, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, समाज कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए कानून मुझे दंडित नहीं कर सकता, ना सोशल लॉ इस पर भावी होगा, प्रभावी होगा, और ना स्टेट लॉ इसके लिए कुछ कर सकता है। सीआरपीसी, आईपीसी, भारत के संविधान, किसी में कोई धारा नहीं है कि अगर मैं इसको तोड़ दूं तो मुझे सजा मिलेगी, क्योंकि ये मेरी वस्तु। ऐसे पुरुष ने स्त्री को अपनी कस्टोडियल प्रॉपर्टी मान लिया, अधिकृत वस्तु मान लिया, कि उसकी जैसी मर्जी हो वो उसके साथ व्यवहार करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे कैसे ही प्रतिबंध लगाए। ये मूल्य आ गया यहां और आज भी खत्म नहीं। परिस्थितियों या दुर्घटनावश अगर किसी स्त्री का कौमार्य खंडित हो जाता है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी यौनिक निष्ठा भंग हो जाती है, तो वो स्त्री अपराधिनी नहीं है। अगर होती तो राम अहिल्या का सम्मान नहीं करते। महिलाओं को इसीलिए कन्या कहा गया यहां पर, क्योंकि कन्या भारतीय समाज में पूजनीय और सम्माननीय शब्द है। स्त्री को उसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकार्यता का, राम का ये रेडिकल बिहेवियर स्तुति योग्य प्रमाण है। अहिल्या के संदर्भ में एक वाक्य प्रायः प्रयोग किया जाता है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि राम ने अहिल्या का उद्धार नहीं किया। मेरे राम ने उद्धार नहीं किया अहिल्या का, अहिल्या को पुनर्प्रतिष्ठित किया था राम ने, जो राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग बन गया। लेकिन मैं एक संकेत दे रहा हूं यहां कि यहां तो राम रेडिकल हो गए, क्या आगे भी हो पाएंगे? इस प्रश्न को मन में रख करके आगे की कथा में हम बढ़ते हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा स्वरूपावा, गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा स्वरूपावा, गए पति लोक आनंद भरी।